Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna
आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सब परीक्षित है कि कल बहुत ही ऑस्पिशियस या पवित्र दिन है और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है कल का, इसके लिए कृष्ण के लिए। इसके लिए कल कौन सा दिन है? राधा अष्टमी। तो कल श्रीमती राधिका का आविर्भाव तिथि है। जैसे मैंने कहा कि ये दिन कृष्ण के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कृष्ण का जो हृदय है कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्रिय कोई है तो वो श्रीमती राधा रानी है। तो उसी प्रकार से कृष्ण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन भक्तों के लिए भी कल का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिनको गौड़िया वैष्णव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, तो विशेष रूप से देखा जाए कि इस संप्रदाय में तो हम कौन से संप्रदाय में है? मध्व गौड़िया संप्रदाय, जो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है। भगवान को जो भगवत साक्षात्कार का ज्ञान स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने बांसुरी के द्वारा प्रदान किया था, और उसी ज्ञान को ब्रह्मा ने आगे नारद को दिया। नारद जी ने आगे चलकर व्यास देव को प्रदान किया, और व्यास देव से ये जो परंपरा है मध्वाचार्य तक आती है, और मध्वाचार्य से आगे महाआचार्य की जो श्रृंखला है उनमें से श्रील प्रभुपाद आते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे संप्रदाय के जितने भी महान आचार्य हैं वो श्रीमती राधिका के अंतरंग सेवक हैं, अंतरंग सेवक हैं, सेविकाएं हैं। तो इसी कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव तिथि को मनाना, क्योंकि उत्सव हमारे जीवन में इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर उत्साह आ जाए। क्या आ जाए? उत्साह। क्योंकि भौतिक जगत में बने रहना ही हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार से कोई सुअर है वो बने रहना चाहता है, मल के गड्ढे में पड़ा रहना चाहता है, लेकिन जो मल के गड्ढे से ऊपर है वो देखता है कि कितनी नीची स्थिति है इसकी। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के भोग रूपी गड्ढे में विषय को जिसे कहते हैं उसमें हम सब भौतिक सुख के लिए रममान रहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई उत्साह नहीं होता इससे उठने के लिए। तो इसलिए शास्त्रों में हमारे आचार्य ने पूरे साल में नाना प्रकार के फेस्टिवल्स दिए हैं, उत्सव दिए हैं कि हमारे अंदर उत्साह आ जाए, कृष्ण को जानने के लिए हम उत्साहित हो जाए, भगवत सेवा के लिए हम उत्साहित हो जाए, भगवत नाम का उच्चारण करने के लिए उत्साहित हो जाए। तो इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो उत्सव है श्रीमती राधा रानी का, जो हमें प्रेरित करता है कृष्ण की सेवा के लिए। तब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि श्रीमती राधिका का जो स्थान है वो किस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दो दल है, दो ग्रुप है। एक ग्रुप तो कृष्ण का अपना ग्रुप है, कृष्ण का दल है, और दूसरा दल श्रीमती राधिका का अपना दल है। तो लेकिन इस संप्रदाय के जो भक्त है वो कृष्ण के दल में नहीं है, वो सारे किसके दल में है? श्रीमती राधिका के दल में है। तो जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो श्रीमती राधिका की जो स्थिति है हम उसको जानने का प्रयास करें। तो कौन है ये श्रीमती राधिका? श्रीमती राधा रानी है कृष्ण की अनुकंपा या कृष्ण की जो कृपा है उसकी मूर्तिमान स्वरूप है। किसके स्वरूप है श्रीमती राधिका? कृष्ण की जो अनुकंपा है। किसके प्रति अनुकंपा? भौतिक जगत के जीवों के प्रति जो अनुकंपा है, दया की भावना है, कृपा है, उसकी जो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति तभी कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है जब उसके ऊपर श्रीमती राधिका की महती कृपा हो जाए, श्रीमती राधिका का जो कृपा कटाक्ष उसे प्राप्त हो जाए, तभी वो वास्तव में श्रीमती राधिका की कृपा से ही कोई व्यक्ति कृष्ण को सर्व कर सकता है, कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो कृष्ण की सेवा अलग अलग भावनाओं में की जाती है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में रस कहा गया है या रति कहा गया है। तो वो क्या है अलग अलग भावना, जिन भावना में हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद अपने भगवद गीता के भूमिका में लिखते हैं, हाँ पहली वो भावना क्या है? पहली भावना है शांत, शांत रस में कोई भगवत सेवा कर सकता है। या है दास है, उससे भी परे क्या है? सख्य है, सखा के रूप में भगवत सेवा कर सकता है। उससे भी परे है वात्सल्य, माता पिता के रूप में हम भगवान का अपना पुत्र मानकर उस भावना से भगवत सेवा की जा सकती है। या फिर भगवान को अपना प्रेमी के रूप में स्वीकार करके जिसे माधुर्य की जो भावना है उस माध्यम से एक जो भक्त है वो भगवान की सेवा कर सकता है। तो ये जो पांच प्रकार की सेवाओं की भावना है वो अपने अपने स्थान में परिपूर्ण है। चाहे कोई भक्त इन पांचों में से किसी भी भावना से भगवान की सेवा करता है वो उतनी ही मात्रा में वो पूर्ण संतुष्टि अनुभव करता है, वो परिपूर्ण संतुष्ट होता है। और ये जो सेवा की भावना है, ये सेवाओं की भावना केवल जो शुद्ध जीव है वही प्राप्त कर सकता है। अभी भौतिक जगत में हम अपने अपने संतुष्ट नहीं है, हम अपने संतुष्ट के लिए हम क्या है, बाकी नाना प्रकार की वस्तुएं चीजें हैं या फिर व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मैं पूर्ण संतुष्टि अनुभव करूंगा या अनुभव करूंगी। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई व्यक्ति भौतिक जगत में संतुष्टि अनुभव कर रहा है, असंभव है। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम अपने लाइफ में खोज रहे हैं, जिस प्रेम प्राप्ति की हम हमारे हृदय में अभिलाषा कर रहे हैं, हाँ वो केवल कृष्ण के प्रति हमारा जो नेचुरल प्रेम है या वो व्यक्ति कृष्ण है। तो इस प्रकार की जो भगवत सेवा की जो भावना है ये केवल विशुद्ध भाव है जो भगवान के प्रति एक जो भगवत सेवक है वो प्रकट करता है। क्योंकि ये भौतिक धरातल पर नहीं है, हाँ ये जो पांचों प्रकार की सेवा की जो भावना है, माता पिता के रूप में या प्रेमी या प्रेमिका के रूप में भगवत सेवा, या मित्र के रूप में भगवत सेवा, या दास के रूप में भगवत सेवा, ये इस भौतिक जो संबंध है और ये वो जो आध्यात्मिक संबंध है कृष्ण के साथ वो एक समान नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परां। तो ये भगवत सेवा की भावना परा है, परा का मतलब है भगवान कहते श्रेष्ठ है, ये मिश्रण नहीं है। तो इसलिए ये भगवत सेवा सर्वोत्कृष्ट सेवा है। और इस धरातल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम जो देहात्म बुद्धि है उससे परे होना चाहिए। तो देहात्म बुद्धि क्या है? देह को आत्मा मान लेना, मैं ये शरीर हूं, इस भावना को अपने हृदय में पक्का करना, इसको देहात्म बुद्धि कहा गया है। तो जब तक व्यक्ति इस भावना को सही रूप से नहीं समझता कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं और ये शरीर से संबंधित जो भी मेरे संबंध है ये सारे क्या है, अशाश्वत है, जब तक इस चीज को व्यक्ति अच्छी तरह से समझता नहीं तब तक वास्तव में वो जो भगवान की परा सेवा है, सर्वोत्कृष्ट सेवा है, उसको जान नहीं सकता। तो इसलिए ये जो पांच प्रकार की सेवाओं की भावना है, इनमें सर्वोत्कृष्ट सेवा का जो भाव है वो कौन सा है? माधुर्य की जो भावना है भगवान के प्रति सेवा का। क्योंकि ये जो पांच प्रकार के रस हैं, शांत है, शांत रस में कौन किस प्रकार से सेवा करता है भगवान की? गाय है, बछड़े हैं, मोर आदि है, मंकीज है, बंदर आदि है वृंदावन धाम में। तो ये भगवत सेवा में इस प्रकार से अपने आप को लगाते हैं, लेकिन उनमें भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान नहीं है। लेकिन उससे भी परे है वो भावना है दास भावना, दास के रूप में भगवत सेवा करना, जिसमें भगवान के साथ क्या है? रेसिप्रोकेशन है, आदान प्रदान है सेवा का। जो हनुमान आदि है वृंदावन में भगवत सेवक है, रक्त चित्रक आदि। और उससे भी श्रेष्ठ जो भावना है वो है सख्य, भगवान के साथ सखा के रूप में भगवत सेवा में नियुक्त होना। मधुमंगल, श्रीदान, लवंग आदि जो भगवान के सखा है, जो भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के सर में जाके बैठते हैं, भगवान उनके सर में दौड़े चराने आदि के लिए जाते हैं। तो उससे भी उन्नत जो भावना है भगवान के साथ वात्सल्य है, कि भगवान क्या है? मेरे पुत्र है। जिस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा का जो भगवत प्रीति था, भगवत सेवा की जो भावना थी, उससे भी बड़े शास्त्र कहते हैं भगवान की जो सेवा की जो भावना है वो वृंदावन की जो ब्रज वधु है, ब्रज बालाएं हैं, गोपिकाएं हैं, उनके हृदय में थी। और उनका जो प्रीति है शास्त्रों में सर्वोत्कृष्ट कहा गया है, टॉपमोस्ट अफेक्शन कृष्ण के प्रति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता, कि ये जो रम्या है वृंदावन की जो ग्वाल स्त्रिया है, गोपिकाएं हैं, इनका अफेक्शन इतना अधिक है कृष्ण के लिए कि वो एक क्षण भर भी कृष्ण को भूल नहीं सकते, और हम एक क्षण भर भी कृष्ण को ठीक से याद नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका जो स्थान है वो बहुत अधिक सर्वोत्कृष्ट है, और उनमें भी सर्वोत्कृष्ट कौन है? श्रीमती राधिका है। कितनी गोपियां हैं? करोड़ों करोड़ गोपियां हैं। उनमें भी श्रीमती राधिका का जो सर्विस एटीट्यूड है, सेवा की जो भावना है कृष्ण के प्रति, वो सर्वोच्च है। कई बार लोग कहते हैं कि ये श्रीमती राधिका कौन है, आप लोग तो उसको लक्ष्मी का स्थान दे रहे हो, क्या वो राधिका लक्ष्मी से बढ़कर है? तो लेकिन शास्त्रों के द्वारा हम देखते हैं कि श्रीमती राधिका लक्ष्मी से क्या है? बढ़कर है। लक्ष्मी का भी उगम स्थान है श्रीमती राधिका। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, अवतारे कृष्ण क्षय करे अवतार, अंशनी राधा है तीन धने रविस्तार, कि जिस प्रकार से कृष्ण से सारे अवतार उद्भूत होते हैं, सारे अवतारों के जो सोर्स है, स्रोत है, वो कृष्ण है। नारायण आदि है, नरसिम्हा, वामन, भगवान राम आदि, ये सब किनसे निकलते हैं? कृष्ण से उद्भूत होते हैं। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधिका से जितने भी ये भगवत शक्तियां हैं, लक्ष्मी आदि है, गोपिकाएं हैं, सीता है, द्वारका के इतनी सारी रानियां हैं 16,108, एक इनसे उद्भूत होती है श्रीमती राधिका से निकलती है। तो इसलिए एक भक्त को श्रीमती राधिका का जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है उसको समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा श्रीमती राधिका इतनी चिन्ह नहीं है। केवल आप श्रीमती राधिका का जो कृपा है केवल ये चांट करके नहीं क्रॉस कर सकते। राधे राधे जपा करो चले आएंगे बिहारी, ये इतना सरल नहीं है। बिहारी नहीं आएंगे, आपको बिहार में जप लेना पड़ेगा। तो उसके लिए श्रीमती राधिका का जो वास्तविक स्थान है, कृष्ण सेवा की जो सर्वोत्कृष्ट सीमा है, उनका कृष्ण के प्रति जो सर्वोच्च प्रेम है, उसको समझना होगा। और तभी वास्तव में व्यक्ति क्वालिफाइड होगा कृष्ण को सर्व करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो जो भगवान है जिनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है कि सारे शक्तियों के स्रोत हैं, इसलिए भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद कहते हैं पराश शक्ति विविधैर श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान की तो अनंत अनंत शक्तियां हैं। हाँ, तो भगवान तब तक हो ही नहीं सकते जब उनके पास शक्तियां नहीं है, या कोई राजा हो नहीं सकता जब तक उनके पास प्रजा ना हो। तो भगवान भगवान नहीं है जब तक उनके पास क्या नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो शक्तिमान कैसे। तो ऐसे भगवान जो सर्वशक्तिमान है उनकी अनंत शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का विभाजन एक ही चीज में किया जा सकता है। सारी चीजें सारी शक्तियां क्या है, एक है, लेकिन फिर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी समझ के लिए शास्त्र भगवान के जो नाना प्रकार की एनर्जीज हैं शक्तियां हैं उनको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भगवान की शक्ति क्या है, बहिरंगा शक्ति जिसको भौतिक शक्ति कहा गया है। भौतिक शक्ति वो है इस भौतिक जगत, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री कौन है, दुर्गा देवी है, और दुर्गा देवी के हाथ में हर समय त्रिशूल रहता है। क्यों? क्योंकि वो तीन प्रकार के कष्ट देती रहती है हर एक जीवों को, आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक, ताकि सारे जीव तड़प तड़प कर अल्टीमेटली किसकी शरण में जाए, किसके, कृष्ण की शरण में जाए। ये दुर्गा देवी का काम ही है कष्ट देते रहना, समझ जाना कि हाँ अभी ये भौतिक जगत को छोड़ना ही मुझे। श्रील प्रभुपाद एक कथा कहा करते थे, एक बार एक व्यक्ति था जिनकी 7-8 बेटियां थी, तो उन सबका शादी एक ही समय में उन्होंने कर दिया, और सारे जो दामाद थे वो घर में रहने लगे। किसके घर में रहने लगे, ससुराल क्या कहते प्रॉपर वर्ड, पत्नी के घर में रहने लगे, समझ में आ गया होगा। तो सारे रह गए तो कुछ दिन के लिए तो आप टॉलरेट कर सकते हो, हाँ आपके घर में गेस्ट आ जाए 2 दिन के लिए ठीक है, तीसरा दिन आ जाए तो आपको लगता है कब ये निकलेगा बाहर, कितना इसका भरण पोषण करेंगे, कितना केयर करेंगे, कितनी सेवा करेंगे। तो फिर ये तो लगा जो उन बेटियों का पिता था, उन्होंने देखा कि ये तो बस घर में बने हुए हैं, ये हिरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, रोज आराम से इनके लिए रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कैसे इनको निकाला जाए बाहर, तो उन्होंने क्या किया, अब डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते उससे रिलेशन खराब हो जाए, तो इन्होंने क्या किया कि जो भोजन है उनमें नमक डालना बंद कर दिया। तो कुछ जो दामाद थे बड़े बुद्धिमान थे, बुद्धिमान को इशारा काफी है, तो उन्होंने समझ लिया कि अभी हमें अपना चलती करनी चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ तो चले गए। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों में अलग अलग जो सुविधाएं हैं फैसिलिटीज हैं उन्होंने कम करना शुरू कर दी, तो कुछ तो चले गए, लेकिन उनमें से एक बड़ा शक्तिशाली था, वो चाहे नमक हो या ना हो, प्रॉपर फैसिलिटी हो या ना हो, लेकिन आपका घर आप छोड़ेंगे नहीं। फिर उस ससुर ने सोचा कि ऐसे जाएगा नहीं, उन्होंने अपने बेटे को कहा, क्या कहा, इसकी पिटाई करो तब ये घर छोड़ सकता है। तब एक दिन उसकी पिटाई थी, जो आखिरी बचा था उसने घर छोड़ा। उसी प्रकार से भगवान अपनी ये जो भौतिक शक्ति है, मटेरियल एनर्जी है, उसको लगाते हैं हमारे पीछे, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में सुख को उपभोग करना चाहते हैं और इस भौतिक जगत में अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, अपने आप को जमाना चाहते हैं, और कब तक, अनंत अनलिमिटेड सालों के लिए, शाश्वत सालों के लिए। लेकिन भगवान अपने जो बहिरंगा शक्ति है उसको ऑर्डर देते हैं, और ये भौतिक शक्ति हमें क्या करती है, नाना प्रकार के विपदाएं प्रदान करती है, शारीरिक है, मानसिक है, प्राकृतिक है, और फिर हम फिर सोचते कि नहीं नहीं अभी बहुत हो गया, ये भौतिक जगत भाग ना ही लागे, ये संसार अभी भौतिक जगत अच्छा नहीं लग रहा है, इस भौतिक जगत से अभी मुझे निकलना चाहिए। तो ये भगवान की एक शक्ति होगी, बहिरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति, और दूसरा विभाजन क्या है भगवत शक्ति का, वो है आध्यात्मिक शक्ति, जिसको अंतरंगा शक्ति कहा जाता है या पराशक्ति कहा जाता है। और इस पराशक्ति के भी तीन अलग विभाजन किए गए हैं। हाँ, थोड़ा सा समझने के लिए कठिन होगा, लेकिन आप थोड़ा टॉलरेट करिए। तो जिस प्रकार से भगवान की ये अंतरंग शक्ति एक ही है, लेकिन एक ही शक्ति जब अलग अलग कार्य करती है तो उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई एक सेवक है, तो वो सेवक अलग अलग कार्य करता है तो उसको अलग अलग नाम होते हैं। वही एक ही सेवक जब कुकिंग करता है तो उसे कुक कहते हैं, वही सेवक जब घर की रखवाली करता है तो उसको चौकीदार कहते हैं, वही सेवक जब और कार्य करता है, ड्राइविंग का कार्य करता है तो उसको ड्राइवर करते हैं। वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन ड्यूटीज कार्य अलग अलग करता है, इसलिए उसके अलग अलग नाम है। तो उसी प्रकार से भगवान के अंतरंग शक्ति है जो तीन प्रकार के कार्य करती है। एक कार्य क्या है, जिसे कहते हैं संधिनी। संधिनी का मतलब कि भगवान के अस्तित्व का आधार है, भगवान के धाम आदि का आधार है, जिसको सत कहा गया है। जैसे हम आप सबने सुना होगा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। तो भगवान की जो अंतरंग शक्ति है वो क्या है, सत मीन्स शाश्वत, चित मीन्स पूर्ण ज्ञानमय, और आनंद मीन्स पूर्ण आनंदमय। तो इस प्रकार से ये जो भगवत शक्ति है वो तीन प्रकार का कार्य करती है। पहला कार्य है अस्तित्व को बनाए रखना, दूसरा कार्य क्या है उसका, सम्यक शक्ति है जिसका कार्य है कि वेद का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। उस शक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, जो भगवान सारे जगत को जानते हैं, जिसको चित्त शक्ति कहा जाता है। और जो तीसरी भगवत शक्ति है जिसको अल्लादिनी कहा गया है, अल्लादिनी का मतलब है कृष्ण जिसके द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। कृष्ण आनंद की अनुभूति करते ही करते हैं, लेकिन हम भी जीव भी भगवत भक्ति से दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। हाँ, उसको क्या कहा गया है, अल्लादिनी शक्ति कहा गया है। तो ये जो अल्लादिनी शक्ति है या आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। ये भगवान की अंतरंग शक्ति है जिसके द्वारा वास्तव में कोई जीव हम भगवत सेवा को प्राप्त कर सकता है और भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का स्थान सारे गोपियों में या सारे भगवत सेवकों में सर्वोच्च है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण धनि कृष्ण कांता शिरोमणि। कृष्ण कांता, कांता मतलब जो कृष्ण से प्रेम करती है, उनमें सर्वोत्कृष्ट कोई है तो वो श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण मूल शक्तिमान है, तो उसी प्रकार से श्रीमती राधिका कौन है, मूल शक्ति है, भगवान की मूल शक्ति है, सनातन शक्ति है। तो भगवान की ये जो शक्ति है या श्रीमती राधिका है, ये कृष्ण से अभिन्न है, एक ही स्वरूप धरे हुए है। वास्तव में श्रीमती राधिका आध्यात्मिक जगत के प्रकट कैसे होती है, गोलोक वृंदावन जो हमारे इंद्रियों से परे है, जो भगवान का नित्य धाम है गोलोक वृंदावन, तो वहां श्रीमती राधिका का प्राकट्य का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में किया गया है। तो उनमें कहा गया है कि श्रीमती राधिका कौन है, जो भगवान आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में एक स्थान है जिसे रास मंडल कहा जाता है। जब कृष्ण वहां बैठे ही थे और कृष्ण सोच ही रहे थे, क्या सोच रहे थे कृष्ण, कि किस प्रकार से मैं आनंद की अनुभूति करूंगा। वो अकेले थे वहां, और वहां एक पर्वत है जिसका नाम था शतशृंग, जो ये जगत में गोवर्धन के रूप में प्रकट होता है। तो कृष्ण बैठे थे और सोच रहे थे कि मुझे आनंद अनुभव करना है, ये इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई। उसी समय उनके लेफ्ट साइड से एक युवती प्रकट हुई, किसके लेफ्ट साइड से, कृष्ण के, और वही युवती वो कृष्ण के साथ ही बैठ गई और कृष्ण उस लावण्यवती युवती को देखने लगे जो सबसे अधिक आकर्षक थी, सबसे सुंदर थे और जिन्होंने नाना प्रकार के आभूषण और जो मालाएं हैं वो उन्होंने धारण किए थे। तो ऐसे श्रीमती राधिका ने जब कृष्ण की ओर देखा, उनका पहला प्राकट्य था गोलोक वृंदावन में, तो वो तुरंत समझ गए कि कृष्ण क्या चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो वही श्रीमती राधिका वहां से दौड़ती है गार्डन में और एक फूल तोड़ने के लिए दौड़ती है और वो क्या करती है, उस फूल को कृष्ण के चरणों में समर्पित करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं उनका राधा नाम क्यों है, क्योंकि रा का मतलब है कि वो रास मंडल जो आध्यात्मिक जगत का स्थान है वहां उनका प्राकट्य हुआ, और धा का मतलब है धावमानाना, कि जैसे वो प्रकट हो गई उसी क्षण उनका हृदय कृष्ण की सेवा के लिए दौड़ पड़ा, तुरंत भागने लगे कृष्ण सेवा के लिए, हाँ इसलिए हाँ उनको राधा कहा गया है। हाँ तो इसी प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो श्रीमती राधिका है वो सर्वोत्कृष्ट भक्त है, इसलिए श्रीमती राधिका का एक नाम कृष्णमयी है। कृष्णमयी का मतलब कृष्णमयी कृष्ण जारो भीतर बाहिरे जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। तो कृष्णमयी का मतलब भी है कि जहां जिनके अंदर और बाहर कृष्ण है, और वो श्रीमती राधिका जहां जहां देखती है इस जगत में वहां वहां हाँ उन्हें कृष्ण स्फुरित होते हैं। हाँ तो इससे कहा जा सकता है कि श्रीमती राधिका के जो लाइफ एंड सोल है, जीवन और प्राण है, वो कृष्ण है। तो ऐसे हजारों अनंत अनंत गोपियों में 16108 गोपियां उत्कृष्ट है, उनमें भी 108 उत्कृष्ट है, उनमें भी 8 महत्वपूर्ण है अष्ट सखी जिनको कहा जाता है, और उनमें भी 2 गोपियां महत्वपूर्ण है, चंद्रावली और श्रीमती राधिका, और उनमें भी श्रीमती राधिका का जो स्थान है वो सर्वोत्कृष्ट है। हाँ क्योंकि श्रीमती राधिका कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय से अलग नहीं कर सकते। कृष्ण जब वृंदावन चले गए 11 साल के बाद, वो मथुरा में 17 साल उन्होंने निवास किया और फिर वहां द्वारका चले गए, तो सारे जो भगवान के जो रानियां थी 16108 रानियां सत्यभामा रुक्मिणी कालिंदी मित्र विद्या आदि, वो सोचती थी कि हम सब कृष्ण की इतनी अधिक सेवा कर रही हैं, पर्सनली उनको सर्व कर रही हैं, फिर भी कृष्ण का आकर्षण हम वृंदावन के भक्तों के लिए सर्वाधिक है। हम वो वृंदावन के भक्तों के हमेशा याद करते हैं। तो एक बार जब श्रीमती राधा रानी द्वारका में आए थे और सारे रानियों ने श्रीमती राधा रानी का गुणगान सुना था कि श्रीमती राधिका सर्वोत्कृष्ट लावण्यवती है, सर्वोत्कृष्ट सौंदर्यवान है, तो ये सब सोच रहे थे। इन सब ने सुना था रोहिणी से जो बलराम की माता है, इन सब ने सोचा किस प्रकार से कब हमारा भाग्योदय होगा जब हम श्रीमती राधिका का दर्शन कर पाएंगे। एक बार श्रीमती राधा रानी जब द्वारका आए तो सारी रानियां अपने अपने महल छोड़कर केवल श्रीमती राधिका का दर्शन करने के लिए बाहर निकले। जो सत्यभामा भगवान की जो प्रिय पत्नियां हैं उनमें से उन्होंने जैसे श्रीमती राधिका को देखा उसी क्षण वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जो शाम का समय हुआ तो कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा कि हे रुक्मिणी, मैं जानता हूं कि श्रीमती राधिका रोज सोने से पहले दूध पीती है। क्या पीती है? दूध। इसके मंदिरों में दूध ऑफर करते भगवान को इवनिंग में। तो भगवान ने रुक्मिणी को रिक्वेस्ट किया कि आप श्रीमती राधिका के लिए दूध लेके जाओ, उनको दूध पिलाओ। जब ये सुवर्ण ग्लास गोल्डन ग्लास में दूध लेके गई और श्रीमती राधा रानी को ऑफर किया तो राधा रानी ने वो पिया और रुक्मिणी उनको दूध देने के बाद कृष्ण के महल में आती है, कृष्ण के चरणों का मसाज करने लगते हैं और जैसे मसाज कर रहे थे कृष्ण के चरणों को दबा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के चरणों में फोड़े आ गए हैं। रुक्मिणी ने कहा हो कृष्ण, आप तो कहा गर्म स्थान में चले भी नहीं, आपके चरणों में ये फोड़े आदि कैसे आए हैं? तो कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी को कहा, कृष्ण कहते हैं श्री राधिकाया हृदयारविंद पादारविंदम हि विराजते में, श्री राधिकाया हृदयारविंद, कि मैं आपको असली बात बताता हूं कि क्यों मेरे चरणों में फोड़े आए हैं, क्योंकि ये चरण किसी और जगह में रहते नहीं है, ये चरण कहां निवास करते हैं? श्रीमती राधिका के हृदय में निवास करते हैं। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजते में, कि मेरे जो पादारविंद है, चरण है, ये केवल श्रीमती राधिका की प्रॉपर्टी है, श्रीमती राधिका का धन है, और ये कहा श्रीमती राधिका के हृदय में निवास करते हैं। और अपने प्रेम रूपी पाश से श्रीमती राधिका ने हम मेरे जो चरण है अपने हृदय में बांध के रखे हुए हैं, ये चरण एक क्षण के लिए भी उनके हृदय से बाहर नहीं जाते। और तुमने क्या किया है, उनको बहुत अधिक उष्ण, बहुत अधिक गर्म दूध पिलाया है, जिसके कारण हम मेरे जो ये चरण है जिनको ये फोड़े आए हैं, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधिका कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। और इसलिए वास्तव में श्रीमद् भागवतम का प्रणय या श्रीमद् भागवतम की रचना केवल इसलिए हुई है कि श्रीमती राधिका का जो सर्वोच्च स्थान है वो सबको प्रकट कराने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कोई कह सकता है कि श्रीमती राधिका का नाम का वर्णन नहीं है। शुक्रदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में राधिका का नाम का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो श्रीमती राधिका के तोते हैं, शुक है। तो जब वो भागवतम का प्रवचन दे रहे थे तो उनके लिए कर्तव्य था, एक ड्यूटी था। क्या ड्यूटी था? परीक्षित महाराज 7 दिन में शरीर त्यागने वाले थे, उनको 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम को कंप्लीट करना था, और यदि वो श्रीमती राधिका के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भावावेश में आ जाते हैं और अपना जो ये श्रीमद् भागवतम का वक्तव्य है उसको पूर्ण नहीं कर पाते, वो बीच में ही रुक जाता। हाँ, तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में श्रीमती राधिका का जो स्थान है कोई और जो गोपिकास है वो भी नहीं ले सकती। इसलिए भागवत में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा है अनया राधितो नूनं भगवान हरीश्वरः, कि जब भगवान कृष्ण सारे गोपियों के संग में शरद ऋतु में रास क्रीड़ा कर रहे थे, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ गोपियां जिनमें श्रीमती राधिका उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं, और कृष्ण उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, तो सारी गोपियां सोचती है कि कृष्ण कहाँ चले गए। सारी गोपियां कहती है अनया राधितो नूनं, कि एक ऐसी गोपी है जो कृष्ण की सर्वाधिक पूजक है या पूजा करने वाली है। तो इस प्रकार से वो कहती है कि इसलिए गोविंद हम सबको छोड़ के चले गए। तो कृष्ण को वो स्थान प्रिय नहीं होता, उस स्थान में सारी चीजें हो लेकिन जहां श्रीमती राधे राधा रानी ना हो तो वो स्थान कृष्ण के लिए प्रिय नहीं है। और जिस स्थान में केवल श्रीमती राधिका है और बाकी चीजें नहीं है वो स्थान कृष्ण के लिए प्रिय है। इसलिए श्रीमती राधिका का एक नाम है, क्या नाम है उनका? गोविंद, गोविंदानंदिनी, जो गोविंद को आनंद प्रदान करती है या गोविंद को मोहित करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जगत मोहन कृष्ण तहार मोहिनी, कि कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है, क्योंकि कृष्ण इतने आकर्षक है कि इस संसार में सारे जो जीव है वो मदन, मदन का मतलब है कामदेव, कामदेव से आकर्षित है। ऐसे कामदेव ने भी जब कृष्ण के सौंदर्य के बारे में सुना तो वो वृंदावन में चले गए कि क्या वास्तव में कृष्ण इतने सुंदर है। अब इस भौतिक जगत में व्यक्ति छोटे छोटे सौंदर्य के प्रति आकर्षित है, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि इस जगत का सौंदर्य, ये जगत में हम सोचते कि कोई मिस वर्ल्ड है, मिस्टर वर्ल्ड भी हो गया शायद, कोई मिस वर्ल्ड है वो सबसे सुंदर है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा ये जो मिस वर्ल्ड है इसका सौंदर्य जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके तुलना में क्या है, एक कॉकरोच का जो सौंदर्य है वैसा सौंदर्य इस भौतिक जगत के मिस वर्ल्ड का सौंदर्य है। और स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उनका जो सौंदर्य है वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं उनसे भी स्वर्ग की अप्सराओं का जो सौंदर्य है एक मेंढक के सौंदर्य के समान है, मेंढक इतना सुंदर नहीं होता। श्रील प्रभुपाद ने कहा इवन वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं उनसे भी सर्वाधिक जो सौंदर्यवान है वो वृंदावन की गोपिकाएं हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों गोपिकाएं भी अपनी आंखों को एक टक अपना निमेश अपने जो पलके हैं थोड़ी भी झपकती नहीं है, एक टक विदाउट ब्लिंकिंग वो किसको देख रही है, करोड़ों करोड़ों गोपियां खड़ी हैं और उनके बीच में एक नीलमणि श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप में कृष्ण खड़े हैं नील वर्ण के, ये सारी गोपियां उनको देख रही हैं। वास्तव में हम अनुभव नहीं कर सकते कृष्ण के सौंदर्य का अनुभव, क्योंकि वो हमारे अचिंत्य शक्ति से परे हैं। तो इसलिए जो श्रीमती राधिका है कृष्ण तो मदन मोहन है, हम इस भौतिक जगत के काम से मोहन मदन से आकृष्ट है। तो मदन ने सोचा कि कामदेव ने सोचा कि मैं कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करता हूँ, वो वृंदावन में जाता है, वृंदावन में जाकर जहाँ कृष्ण आने वाले थे अपने घर से बाहर उस वृक्ष के ऊपर जाकर बैठता है, कृष्ण आएंगे तो वो मेरे सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर मैं अपने नाना प्रकार के जो पुष्प बाण है उनको चलाकर उनको घायल कर देता हूँ। कृष्ण आए तो कामदेव जो सारे जगत को आकृष्ट करता है वो कृष्ण के सौंदर्य को देखकर खुद आकृष्ट हो जाते हैं और वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं जोर से। हाँ, तो इसलिए कृष्ण का तुरंत नया नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ता है, मदन मोहन। लेकिन ऐसे जो मदन मोहन है कृष्ण है जो कामदेव को भी आकृष्ट करते हैं उनको भी आकृष्ट करने का सामर्थ्य या शक्ति किसमें है, श्रीमती राधिका में है। इसलिए श्रीमती राधिका का जो नाम है वो मदन मोहना मोहिनी, इतना आकृष्ट है। एक बार कृष्ण वृंदावन में थे तो कृष्ण भांडेर वन में जाते हैं, वृंदावन का मतलब है कि जहां 12 वन है तो उनमें से एक माने भांडेर वन जा एक वट वृक्ष है जहां कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, खेलते हैं। तो कृष्ण एक दिन उस स्थान में जाते हैं अपने सखाओं को देखने के लिए कि सारे मेरे जो मित्रगण है वो वहां है या नहीं है, मुझे उनके साथ क्रीड़ाएं करनी है, खेलना है। तो कृष्ण वहां गए तो कृष्ण ने देखा कि कोई सखा है नहीं, वहां सारी गोपियां खड़ी थी और वो सारी गोपियां आपस में बातें कर रही थी, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही थी। जैसे कृष्ण उनके नजदीक गए तो उसी समय उन्होंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया। तो कृष्ण वहां गए, उन्होंने कहा मैं तो अपने सखाओं को देखने के लिए आया था। तो फिर कृष्ण ने कहा ये मेरा स्थान है जहां मैं अपने सारे सखाओं के साथ क्या करता हूँ, नाना प्रकार के क्रीड़ाएं करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, रेसलिंग करता हूँ, कुश्ती क्या कहते हैं उसको, मल्ल युद्ध क्या कहते, क्या वर्ड है प्रॉपरली, कुश्ती करता हूँ। और भगवान ने कहा और हर समय मैं जीतता हूँ, कौन जीतता हूँ, मेरी ही जीत होती है। तो भगवान की जो श्रीमती राधिका की जो सखी थी ललिता, ललिता देवी ने कहा इम्पॉसिबल कि आप हर समय जीतते नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं झूठ नहीं बोलता। भगवान ने कहा आपको पता नहीं कि कितने आसुरों को मारा है, पूतना को, धेनुकासुर, बकासुर, इतने सारे आघासुर आदि को मैंने मारा है, इतना मुझ में शक्ति है। तो ललिता देवी कहती है कि आपकी जो शक्ति है वास्तव में हमारे जो ठाकुरानी है श्रीमती राधिका है उनसे ही आप शक्ति प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि श्रीमती राधिका जो कुकिंग करती है
उससे आपको बल मिलता है, क्योंकि यशोदा माता हर रोज कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए बरसाना से नंदगांव के लिए श्रीमती राधिका को बुलाती थी, और कृष्ण केवल श्रीमती राधिका के द्वारा कुक किया हुआ फोड़ी ग्रहण करते थे, और दुर्वासा के द्वारा वो वर था कि जो भी श्रीमती राधिका के द्वारा कुक किया हुआ जो फूड है वो ग्रहण करेगा तो उनको शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह हर समय जीतेगा। तो ललिता ने कहा कि आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है, आपके शक्ति के जो स्रोत है वो कौन है? श्रीमती राधिका है। इसलिए कृष्ण फिर से शांत हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो गोवर्धन को उठाया था। एक गोपिया कहते आपने अकेले ने नहीं उठाया, हम सबने आपके जो स्टिक्स है क्या कहें डंडे डंडे लगाए थे तब आप उठा पाए। तो इस प्रकार से उनका काफी बातचीत होता है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो श्रीमती राधिका के जो भाई हैं श्रीराम उनको भी हराने का सामर्थ्य रखता हूँ। तो ललिता देवी कहती हैं कि आप यदि मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, कुश्ती करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ग्रुप लीडर हैं श्रीमती राधिका को हरा के दिखाओ। तो उस समय कृष्ण उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। पूरे ब्रज में ये न्यूज फैलती है कि कृष्ण और श्रीमती राधिका में क्या होने वाला है, मल्ल युद्ध होने वाला है, द्वंद होने वाला है, कुश्ती होने वाली है। तो सारे गोपियां इकट्ठा होने वाले थे उस दिन, सारे गोप सखा एकत्रित हो जाते हैं, और सारे पैरट्स आ जाते हैं, हिरण आ जाते हैं, सब प्रकार के एनिमल्स आते हैं। ये स्पेशल मल्ल युद्ध होने वाला था भांडिर वन में। तो जब कृष्ण उस समय आते हैं और तैयार हो जाते हैं दोनों ग्रुप, हाँ, तो कृष्ण के जो सखा है मधुमंगल वो उनको तैयार कर रहे थे, टर्बन आदि पहना रहे थे, प्रॉपरली ड्रेस उनको कर रहे थे, और श्रीमती राधिका को भी ललिता और विशाखा सजा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे नाना प्रकार के फूलों के द्वारा, प्रॉपरली वस्त्रों के द्वारा। तो जब कृष्ण तैयार हो ही रहे थे और मधुमंगल ने कृष्ण के सारे अंगों का मसाज आदि किया, फाइनल किया कि कुश्ती के जो मैदान है अरेना है उसमें जाना है, तो कृष्ण तैयार हो ही रहे थे और निकल ही रहे थे अंदर उस ग्राउंड में जहाँ मल्ल युद्ध होने वाला था। उसी समय जोर से हवा आती है, जो हवा श्रीमती राधिका के शरीर का स्पर्श करके कृष्ण के शरीर का स्पर्श करती है, उसी समय कृष्ण घायल हो जाते हैं। कृष्ण के जो घुटने हैं वो हिलने लगते हैं। हाँ, ये जो मधुमंगल कहते कि अभी तो आप ग्राउंड में भी नहीं गए, अभी आपके अंदर इतने वीकनेस आ रहे हैं, कैसे होगा आपका, चलो चलो हमारी हमें जीतना है। तो जो मधुमंगल के कंधे में कृष्ण अपना हाथ रखे किसी ना किसी प्रकार से ग्राउंड में उतरते हैं। हाँ, जैसे उतरते हैं तो सारे जो गोप सखा हैं वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की जय, जोर जोर से चलाते हैं, अपनी पगड़ी खोलते हैं, घुमाते रहते हैं। हाँ, जैसे आजकल क्रिकेट मैच में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो इंडियंस अपने बेड में रजाई लेकर बैठे तभी भी चलाएंगे, उनको इतना जोश है। तो उसी प्रकार से सारे गोप सखा कृष्ण को प्रोत्साहित कर रहे थे, और यहाँ श्रीमती राधिका जिन्होंने अपना पल्लू घूंघट ढका हुआ था वो आ जाते हैं, धीरे धीरे आई जाते हैं, अभी तक उन्होंने अपने मुख कमल को नहीं खोला है। और जैसे उस ग्राउंड में आ गई श्रीमती राधिका, उस समय उनके जो कोच है प्रशिक्षण देने वाले ललिता सखी ललिता देवी, उन्होंने श्रीमती राधिका के कानों में कहा कि किस प्रकार से आपको फाइट करना है। तो उन्होंने कहा कि हे श्रीमती राधिका, आप क्या करो, अपना जो ये जो घूंघट है उसको थोड़ा सा ऊपर करो, और आपने जो साइड ग्लांस है, लॉन्ग साइड ग्लांस, तिरछ नजर, कृपा कटाक्ष, इस प्रकार से कृष्ण को देखो, आपका विजय निश्चित है। तो श्रीमती राधिका ने अपना थोड़ा सा अंगूठा ऊपर किया, लॉन्ग साइड ग्लांस, ऐसा दृष्टिपात किया कृष्ण की ओर, तो कृष्ण कृष्ण के जो घुटने हैं वो बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं, और कृष्ण गिड़गिड़ाते हुए उस मैदान में गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। सारी गोपियां क्या करती हैं, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से शास्त्रों में नाना प्रकार का वर्णन है कि किस प्रकार से कृष्ण को अट्रैक्ट करने का जो सामर्थ्य है श्रीमती राधिका में। तो हमें ये जानना होगा कि हम तो कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा लेकर यहाँ बैठे हैं, कृष्ण सेवा की मन में स्ट्रॉन्ग डिजायर लेकर यहाँ बैठे हैं। तो कैसे भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया जाए, क्या डिफरेंट वेज है, क्या मार्ग है जिसके द्वारा हम कृष्ण की कृपा को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तो राधा रानी की प्रॉपर्टी है, कृष्ण उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, कृष्ण किसकी प्रॉपर्टी है, राधा रानी की प्रॉपर्टी है। तो हमें कृष्ण को अप्रोच करना है तो हमें श्रीमती राधिका को अप्रोच करना होगा, और श्रीमती राधिका ही हमें जो भगवत प्रेम है वो प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो सबसे पहले श्रीमती राधिका का नाम का उच्चारण किया जाता है। हाँ, जैसे दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली मंदिर का नाम क्या है, श्री श्री राधा बाल सारथी। वृंदावन आप जाते हैं तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो श्रीमती राधिका की कृपा के बिना कृष्ण की जो कृपा है वो प्राप्त करना असंभव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने राधाष्टमी के एक लेक्चर में कहते हैं कि आप कृष्ण को फुल ऑफर करना चाहते हो तो आप क्या करो, वो फुल श्रीमती राधिका के हाथ में दे दो, आपका जीवन सफल है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद के जो पिता थे गौर मोहन डे, वो अपने घरों में हर रोज कई प्रकार के साधुओं को बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, उनको दक्षिणा आदि देते थे और उनसे एक ही प्रार्थना करते थे कि ये जो मेरा बेटा है अभय, आप सब इसको यही आशीर्वाद दे कि ये श्रीमती राधा रानी का भक्त बन जाए। ये महत्वपूर्ण है श्रीमती राधा रानी का स्थान। इसलिए श्री प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ये पुण्य करेबे जबे राधा रानी खुशी हवे। कृष्ण की कृपा तभी अनुकूल होगी जब राधा रानी की कृपा को हम अनुकूल करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की जो कृपा है हम बहुत सरल रूप से हमें प्राप्त हो सकती है। हम उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्री गुरु का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि राधा रानी की कृपा आध्यात्मिक गुरु के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गुरु को श्री गुरु कहा गया है। श्री का मतलब है राधा रानी, जो राधा रानी के आश्रय में है, जिसको भगवान ने भगवत गीता में कहा, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति कौन है, श्रीमती राधिका है, जिसका वर्णन भगवान भगवत गीता में करते हैं। तो इसलिए शास्त्र में इस चीज पर जोर दिया गया है कि केवल श्रीमती राधिका को हम प्रसन्न करते हैं नाना प्रकार की सेवाओं के द्वारा, तो हम सरल रूप से जो कृष्ण की कृपा है उसको अनुभव कर पाते हैं, या कृष्ण की जो कृपा है हम प्राप्त कर पाते हैं। तो किस प्रकार से श्रीमती राधिका की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्र कहते हैं दो दो माध्यम है, एक है नाम सेवा और दूसरा है गुरु सेवा। क्या है दो चीजें, नाम सेवा। नाम सेवा क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई व्यक्ति सिंसियरली इस हरि नाम का आश्रय लेता है तो श्रीमती राधिका अपनी जो कृपा है उस जीव के प्रति, जीव के ऊपर प्रकट करती है, और उसी मोड़ से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगता है तो श्रीमती राधिका की जो कृपा शक्ति है वो उस व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित हो जाती है। इसके उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, किस प्रकार से उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आज्ञा था श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु का, क्या क्या करो, अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हो तो ये जो वैदिक ज्ञान है चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है कि पूरे विश्व में फैला हो, वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो श्रील प्रभुपाद अपने वृद्धावस्था में वृंदावन को छोड़कर हम गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अमेरिका जाते हैं और सारे लोगों को कृष्ण भावना का जो संदेश है वो प्रदान करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन से कि श्रीमती राधिका की जो कृपा शक्ति है वो उनके हृदय में है और वही कृपा की जो शक्ति है उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने बांट दी है। तो श्रीमती राधा रानी का इतना सर्वोत्कृष्ट इतना बड़ा स्थान है कि वही कृष्णा श्रीमती राधा रानी के मूड को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की सेवा करने से जो आनंद मिलता है उस आनंद को अनुभव करने के लिए वही कृष्णा 520 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में मायापुर नंदी मायापुर धाम में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण को तो परम ज्ञाता कहा गया है कि सारी चीजों की ज्ञाता है, लेकिन कृष्ण ने एक बार सोचा कि कुछ तो मुझ में कमी है, तो उस कमी को जानने के लिए कृष्ण ने सारे वेदों को बुलाया और उन्होंने कहा एक एक करके मुझे बताओ कि मुझ में क्या कमी है। तो सारे वेद ना चारों वेद आए, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो हो पूर्ण मदा पूर्ण मिदा पूर्णश पूर्ण मादा, आप तो पूर्ण हो, आपके किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर कृष्ण ने सोचा कि ये वेद भी परफेक्ट नहीं है, उन्होंने श्रीमद भागवतम को बुलाया। श्रीमद भागवतम पर्सनिफाइड भागवतम आया और भागवतम को कहा कि आप मुझे कमी बताओ। श्रीमद भागवतम ने कृष्ण की कमी निकाली। वो कमी क्या थी कि आपके प्रति जो भक्तों का सेवा भावना का जो प्रेम है, भक्तों का आपके प्रति जो प्रीति है, वो केवल भक्त ही आपकी सेवा करके अनुभव कर पाते हैं, आप वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से एक माँ और बेटा है, माँ बेटे की सेवा करके जो आनंद अनुभव करती है वो बेटे को आनंद अनुभव होगा नहीं, या माँ की सेवा लेकर बेटे के जो आनंद महसूस हो रहा है वो माँ को अनुभव नहीं होगा। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त भगवत सेवा करके जो आनंद अनुभूति करते हैं वो भगवान को वो आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसी आनंद को अनुभव करने के लिए और विशेष रूप से भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये श्रीमती राधिका को मेरा सेवा करके मेरे सौंदर्य को देखकर इतना अधिक आनंद अनुभव हो रहा है, वो आनंद क्या है, क्या उसमें मिठास है, क्या खासियत है, उस चीज को अनुभव करने के लिए कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन को छोड़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो उसी आनंद को अनुभव करने के लिए उन्होंने भागवतम से कहा, तो भागवतम ने कहा कि ये कमी है आप में, तो भगवान का क्या करना चाहिए मुझे। श्रीमद् भागवतम ने कहा कि जो आपके जो टॉप मोस्ट डिवोटी है उनके चरण की जो धूली है उसको उसको आपने सर पर धारण करना होगा, तभी आप उस दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हो। तो वही कृष्ण टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, कृष्ण की श्रीमती राधिका है। तो वही कृष्ण श्रीमती राधिका के चरणों की धूलि को धारण करते हैं। कृष्ण का पहले नाम क्या है, काला चांद, जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन टेम्पल में रिलीज का भी नाम रखा है, श्री काला चांद जी अमेरिका में। तो काला चांद है कृष्ण, कभी कभी बहुत सुंदर है, लेकिन वही कृष्ण जो श्रीमती राधिका जो उनके टॉप मोस्ट डिवोटी है उनके चरणों की रज अपने सर में धारण करते हैं, हाँ वो क्या बन जाते हैं, गौरा चांद, जिनको गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है श्रीमती राधा रानी का भाव को और उनकी अंग कांति को स्वीकार करते हैं और भगवत सेवा का या श्रीमती राधा रानी का जो मूड है उसका आस्वादन करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण नाम गाने भाय राधिका चरण पाए, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, कि कृष्ण का नाम गाने से आप श्रीमती राधिका के चरण प्राप्त कर सकते हो और राधा रानी का नाम गाने से किसके चरण प्राप्त कर सकते हो, किसके
कृष्ण के, तो जोर से चांट करें दोनों के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से श्रीमती राधिका भगवान की अंतरंगा शक्ति है और सारे सेविकाओं में द्वारका की रानिया, वैकुंठ की लक्ष्मिया, ब्रज के सारे गोपिया, इनमें भी सर्वोत्कृष्ट स्थान श्रीमती राधिका का है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान को आकृष्ट करने का सामर्थ्य रखती है, भगवत सेवा का सर्वोच्च स्थान रखती है। और उसी चीज को जानने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य है, कल के दिन हुआ था रावण वृंदावन में, जो रावण छोटा सा विलेज है महावन में, वहां वृषभानु महाराज और उनकी जो पत्नी है कीर्तिदास सुंदरी, तो वृषभानु राजा की कोई पुत्री नहीं थी, पुत्र आदि नहीं थे। तो एक दिन सुबह सुबह वो वृषभानु महाराज यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए और डूबे थे पानी में और प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय सहस्र पंखुड़ियों वाला कमल, जो गोल्डन कमल था, वो यमुना में बहते हुए आता है। ये प्रार्थना के मुद्रा में थे, इनके शरीर का स्पर्श कर जाता है। उसी समय वृषभानु महाराज अपनी आंखें खोलते तो देखते हो ये गोल्डन सुवर्ण कमल जो सहस्र दलों का है, और उसमें क्या देखते हैं, एक छोटी सी बालिका जो देख रही है, हंस रही है, अपने पांव हिला रही है। तो वृषभानु महाराज उनको उठाते हैं, जो श्रीमती राधिका है। इसलिए श्रीमती राधिका को अयनिजा कहा गया है, वो किसी भौतिक शरीर से प्रकट नहीं हुई है, उनका दिव्य शरीर है। और कीर्तिदा सुंदरी कीर्तिदा को अपने पत्नी को जाकर श्रीमती राधिका को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्रीमती राधिका ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं करती हैं। तो हमें इस अवसर पर प्रार्थना करनी चाहिए श्रीमती राधिका को कि उनके पास कृष्ण है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दुते पार तुम्हार शक्ति आशे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। कि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण आपकी प्रॉपर्टी है, कृष्ण देते पर आपके अंदर वो पावर है कि आप कृष्ण दे सकती हो, कृष्ण का वितरण कर सकती हो। आमी तो कंगाल, लेकिन हमारे पास कौन सा भावना होना चाहिए कि वास्तव में मुझे भेड़ है, मैं याचक हूँ, बेकर हूँ, तभी वास्तव में हम कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा कर सकते हैं। तो कृष्ण प्रेम की भंडार है श्रीमती राधिका। तो कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल तो इस भावना को हम धारण करें और श्रीमती राधिका को प्रार्थना करें तो उनकी जो अहेतु की कृपा है वो हमें प्राप्त हो जाए, ताकि कृष्ण सेवा के प्रति, भगवत सेवा के प्रति, भगवान नाम के उच्चारण के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो प्रगाढ़ आकर्षण हमारे हृदय में जागृत हो जाए। हरे कृष्ण। श्रीमती राधिका की। तो हम लाउडली चांत करेंगे हरे कृष्ण मंत्र एक साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।